नमस्कार भारत, आज है 23 जून दिन शुक्रवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया अपना उम्मीदवार।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूं और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।
पाकिस्तानी सेना ने कहा कुलभूषण जाधव ने जान बख्शने के लिए सेना प्रमुख से रहम के लिए की फरियाद।
उनकी एक ताज़ा वीडियो भी आई है जिसमें उन्होंने जो भी क्राइम्स किए हैं, सब जो उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर पाकिस्तानी कौम से माफी मांगी है और मर्सी पिटीशन दाखिल की है।
कश्मीर को लेकर पिछले दिनों भारतीय सेना प्रमुख के बयानों से उठे सवालों की होगी चर्चा और साथ ही जिक्र वेस्ट इंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम के आज के पहले वनडे मैच का भी। मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भारत में राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को अपना साझा प्रत्याशी बनाया है। इसका फैसला दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में रह रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित रखने के लिए अपनी योजना सामने रखी है। उन्होंने ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं को बताया कि वह गारंटी देती हैं कि कम से कम 5 साल से ब्रिटेन में रह रहे प्रत्येक नागरिक को सेटल्ड ईयू के तौर पर एक नया अप्रवासी स्टेटस दिया जाएगा। इससे वे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं का लाभ लेना जारी रख पाएंगे। टेरेजा मे ने कहा कि उनका देश नहीं चाहता कि ईयू का कोई नागरिक ब्रिटेन छोड़े। उनके इस फैसले का जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, टेरेजा मे ने आज साफ कर दिया कि ब्रिटेन में 5 साल से रह रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकार बने रहेंगे। यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन बिल्कुल ब्रेग्जिट को लेकर बहुत बहुत सारे सवाल हैं। आर्थिक मसले हैं, आयरलैंड से रिश्ते की बात है, जहां इसका मतलब है कि अक्टूबर तक हमें अभी बहुत कुछ करना है। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। अमरीकी सरकार के एक पूर्व अधिकारी को एक चीनी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। केविन मेलरी पर आरोप है कि इस साल वह शंघाई में संदिग्ध चीनी एजेंट से मिले थे। उन्होंने एफबीआई एजेंट्स को बताया था कि वह शंघाई में जिससे मिले थे उसे वह चीनी थिंक टैंक का आदमी समझते थे। 60 साल के मेलरी रक्षा के क्षेत्र में कई निजी कंपनियों और अमरीकी सरकार के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ काफ़ी गोपनीय जानकारी उनकी पहुँच में थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास पूर्व एफबीआई चीफ जेम्स कोमी से बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पिछले महीने कोमी को पद से हटाने के बाद ट्रंप ने एक ट्वीट में ऐसे संकेत दिए थे कि उनके पास बातचीत के टेप हो सकते हैं, लेकिन कथित टेप सौंपने की मांग और चुनौतियों के महीने भर बाद ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें नहीं पता कि बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग है या नहीं, पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। अमरीकी राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने जेम्स कोमी को इसलिए हटाया क्योंकि वह राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल और ट्रंप के चुनाव अभियान के बीच कथित साठगांठ की जांच कर रहे थे। इस मसले पर पत्रकारों से बात करते हुए व्हाइट हाउस की उपप्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा, आप लोग जवाब चाहते थे, उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा था कि वो ये हफ्ता ख़त्म होने तक जवाब दे देंगे और उन्होंने दे दिया। मुझे किसी रिकॉर्डिंग की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उनका बयान पूरी तरह साफ है। ये थे व्हाइट हाउस की उपप्रवक्ता सारा सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कुर्द और अरब लड़ाके इस्लामिक स्टेट के मजबूत गढ़ उत्तर कोरिया के रक्का शहर से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर रह गए हैं। इन लड़ाकों के साथ सफ़र कर रहे बीबीसी रिपोर्टर रक्का पहुंचने वाले पहले पत्रकारों में से हैं। उन्होंने बताया कि चरमपंथी अब पड़ोस की संकरी गलियों में उतर आए हैं और हर संभव तरीके से जवाब दे रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे ये लड़ाके सीरियाई लोकतांत्रिक बल कहलाते हैं और अमरीका की अगुवाई वाला गठबंधन इनकी मदद कर रहा है। रक्का में अभी हजारों आम लोग फंसे हुए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से संभवतः एक और रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ pbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल विपक्ष ने अपना साझा प्रत्याशी चुन लिया। 17 विपक्षी दलों ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले मैदान में उतारा है। यानी एनडीए की ओर से दलित प्रत्याशी के जवाब में अब विपक्ष ने भी एक दलित महिला को उम्मीदवार बनाया है। कल अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद मीरा कुमार पत्रकारों के सामने आई।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि विपक्ष एकमत हो गया है।
नाम कई उठ रहे थे मगर कल विपक्षी दलों के बीच सहमति मीरा कुमार के नाम पर बनी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद।
तमाम विपक्षी दलों ने ये सोचा कि उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई राष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकता है और सभी दलों ने अपना समर्थन उनको दे दिया।
वाम दल पहले ही कह चुके थे कि भले ही हार हो मगर मैदान में उतरना जरूरी है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। सीताराम कह रहे थे कि 17 दलों में उनके नाम पर एक राय थी और उन्होंने अन्य दलों से भी मीरा कुमार के नाम पर समर्थन मांगा है। दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले एनडीए उम्मीदवार का विरोध नहीं करने का संकेत दिया था लेकिन अब बीएसपी ने इरादा बदल दिया है। मायावती बोली,
ये स्पष्ट है कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। इस कारण अब हमारी पार्टी श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है।
यानी अब दोनों उम्मीदवार ऐसे हैं जो दलित हैं और जिनका ताल्लुक बिहार से है। कोविंद बिहार के गवर्नर हैं तो मीरा कुमार बिहार के जाने माने नेता रहे बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं और बिहार से सांसद भी रह चुकी हैं। ऐसे में बिहार में गहमागहमी बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव मीरा कुमार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन गठबंधन में उनके पार्टनर नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के साथ हैं। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश ऐतिहासिक गलती ना करें लेकिन नीतीश की जनता दल यूनाइटेड अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। नीतीश का फैसला विपक्ष की एकता और राजद जदयू गठबंधन दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति चुनाव ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। यह हलचल बुधवार को ही दिखाई देने लगी थी और कल राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह और तेज हो गई। जदयू ने बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव में अपने विरोधी गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की घोषणा की थी। मीरा कुमार की उम्मीदवारी तय होने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल तल्ख अंदाज में कहा,
सब लोग दुनिया जग जाहिर है बोल दिया। तब पहले तो वही लोग मीटिंग में आए थे कि जो फैसला होगा उसी के साथ रहेंगे। पता नहीं क्या इन लोगों के बीच में क्या हुआ, दिमाग बना है। नीतीश जी हमको फोन किए थे कि मेरी निजी राय है, हम कहीं सब गलती भी मत करिए, ऐतिहासिक गलती मत करिए, फिर भी हम अपील करते हैं नीतीश कुमार से कि वो विचार करें अपने गठबंधन में। गठबंधन को हमको तोड़ना नहीं ना है।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अभी लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव की अपील को खारिज कर दिया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा,
ये फैसला हमने बहुत सोच समझ करके लिया है और हमारी पार्टी सर्वोच्च समिति ने तय किया, इसलिए कोई प्रश्न नहीं इसको बदलने का या पुनर्विचार करने का। जिस समय रामनाथ कोविंद जी की घोषणा हुई है उम्मीदवारी की, नीतीश कुमार जी ने अपने कंसर्न और अपने ऑब्जर्वेशन श्रीमती गांधी के साथ भी और लालू प्रसाद जी के साथ भी शेयर किए कि ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए श्री रामनाथ कोविंद का विरोध करना संभव नहीं होगा। वो अपनी चिंताएं और कंसर्न पहले ही दोनों नेताओं को बता चुके हैं।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार के रोहतास जिले से हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता मरहूम जगजीवन राम की बेटी हैं। केसी त्यागी ने भी इतना जरूर कहा है कि मीरा कुमार की उम्मीदवारी अच्छी है। जानकार बिहार की गठबंधन सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं मान रहे क्योंकि सरकार में शामिल दोनों बड़े दलों के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं,
तत्काल ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन टूटने जा रहा है इस फैसले के बाद भी, ये दोनों ही ओर से ये कोशिश रहेगी, क्योंकि आपके पास उस तरह से कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जो आप देने जा रहे हैं, या देखे आप क्या हासिल कर रहे हैं ये भी देखने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि 2019 का जो मसला है, 2019 के संसदीय चुनाव तक का, तो हो सकता है कि समीकरण कुछ बदले और उस समीकरण में नए दोस्त पुराने दोस्त जुड़े, तो इसकी संभावना हो सकती है।
आज लालू ने पटना में इफ्तार का आयोजन किया है। लालू के मुताबिक इसमें आज उनकी नीतीश से मुलाकात होनी है। आज नीतीश अगर पहुंचे तो जाहिर है कि दस्तूर के मुताबिक गले भी मिलेंगे, लेकिन कल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दोनों के दिलों के बीच दूरी थोड़ी बढ़ी हुई होगी। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
बिहार की राजनीति पर राष्ट्रपति चुनाव की छाया। और अब रुख पाकिस्तान का, जहां कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में कल एक नई सुगबुगाहट हुई। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि कुलभूषण ने फांसी की सजा माफ करने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सामने दया याचिका दाखिल की है। भारत ये मसला अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में ले गया था, जहां सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण को फांसी नहीं देने का फैसला सुनाया गया। BBC संवाददाता हरिता कांडपाल ने इस्लामाबाद में BBC उर्दू के संवाददाता मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से संपर्क कर पूछा कि दया याचिका पर अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी।
दरअसल कुलभूषण जाधव ने, जो उनका केस चल रहा था पाकिस्तान की फौजी अदालत के अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो उसमें जब उनको सजा दी गई और उसके बाद उन्होंने उसकी अपील की और वो अपील भी रिजेक्ट हो गई, तो अब उनके पास जो दो रास्ते हैं वो ये हैं कि या तो वो आर्मी चीफ से रहम की अपील करें, सदर पाकिस्तान से रहम की अपील करें, और या फिर वो सिविल कोर्ट्स में अपील करें। तो कुलभूषण जाधव, जिनको कहा जा रहा है कि वो भारतीय नेवी के कमांडर हैं और पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने अब फौज का जो शोबा ताल्लुकात आम्मा है पाकिस्तानी फौज का, PR डिपार्टमेंट जिसे हम कहेंगे, उसने ये बताया है कि अब कुलभूषण जाधव ने मर्सी पिटीशन, रहम की अपील, उनकी जान बख्श देने की अपील की है पाकिस्तानी फौज के सरबरा से, और उन्होंने उनकी एक ताज़ा वीडियो भी आई है जिसमें उन्होंने जो भी क्राइम्स किए हैं, सब जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस पर पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगी है और मर्सी पिटीशन दाखिल की है।
ये नया वीडियो है तो इसमें कुछ नई बातें भी क्या उन्होंने कुछ बोली हैं?
ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुरानी वीडियो का एक्सटेंशन है। इसके अंदर उन्होंने जो जो जराइम, जो टेररिस्ट एक्ट या एस्पियोनाज जिसको हम जासूसी कहते हैं, उसकी तफसील बयान की है। जो नई चीज़ मुझे लगी सुनने के बाद उसमें, ये 10 मिनट की वीडियो है और ये बताया गया है कि ये अप्रैल में रिकॉर्ड की गई है, उसमें उन्होंने दो बातें नई की हैं। एक बात तो ये कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उस मंसूबे को किस तरीके से उनको टास्क दिया गया था भारत की जानिब से अलेजिडली, कि उसको टॉपल किया जाए, उसको खराब किया जाए। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ऐड की है वो ये कि उनको पाकिस्तान में जो उनके ऊपर मुकदमा चला है, जो केस चला है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, उसमें उनको पूरा काउंसलर एक्सेस दिया गया, यानी उनको अपने दिफा का पूरा हक दिया गया, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक दिया गया।
ये जो दया याचिका इन्होंने दी है, इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है?
इसके बाद अगर ये अपील रिजेक्ट कर देते हैं पाकिस्तानी फौज के जो सरबरा हैं, तो उसके बाद इनके पास एक ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास, यही अपील लेके कि उनकी जान बख्श दी जाए।
ICJ में भी मामला चल रहा है और ICJ ने कहा है कि जब तक की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक रहे, उसे इसका अमल ना किया जाए, इस फैसले का जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने दिया है।
ऐसा लग यही रहा है कि ये जो मर्सी पिटीशन है, उसके बाद ये लग रहा है कि अभी तक पाकिस्तान में ही इस केस का कानूनी जो तरीक़ेकार है, जो पूरा प्रोसेस है, अमल है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ही ये कानूनी अमल मुकम्मल नहीं हुआ और पाकिस्तान ने ICJ का जो स्टे ऑर्डर है उसकी वजह से नहीं रोकी हुई है इनकी फांसी, बल्कि अपने ही लीगल प्रोसेस की वजह से रोकी है।
क्या ये दिखाने की कोशिश है कि नहीं, ये इसको कुलभूषण जाधव को जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर का मौका दिया गया है?
जी बिल्कुल, कल जो उनकी वीडियो रिलीज की गई है उसमें उन्होंने एंड में खुद ये बात कही है कि मुझे इस पूरे केस के दौरान काउंसलर एक्सेस या अपने दिफा का हक या अपने डिफेंस का हक दिया गया है। तो इस वीडियो में ये एक नई चीज थी जो कि कमेंडेबल है कि वो खुद जब ये कह रहे हैं कि उन्हें दिफा का हक है तो फिर ये प्रूफ करना खासा मुश्किल है कि पाकिस्तान ने उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया।
बीबीसी उर्दू संवाददाता मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी। मगर भारत ने पाकिस्तान के इन दावों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इस कथित दया याचिका का ब्यौरा और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं और ये हुआ भी है कि नहीं इस पर संदेह है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा है कि ये अनापेक्षित और गुमराह करने वाला कदम इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए गए मामले को बदलने की कोशिश है जहां मामला भारत के पक्ष में नजर आता है। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर। कुलदीप मिश्र हमारे साथ हैं अखबारों के साथ। कुलदीप, अखबारों में भी कुलदीप जाधव मामले की चर्चा है।
जी बिल्कुल, कुलभूषण जाधव के मामले की चर्चा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सामने जो दया याचिका उन्होंने दाखिल की है ये है। कुछ अखबारों ने इसी में शीर्षक बनाया है उनके उस कथित इकबालिया बयान वाले वीडियो को। जैसे अमर उजाला में मैं देख पा रहा हूँ तो उन्होंने शीर्षक दिया है, पाक ने जारी किया जाधव का दूसरा वीडियो जिसमें है 114 कट। ये अमर उजाला का शीर्षक है। इसके अलावा जो खबर छाई हुई है वो राष्ट्रपति चुनाव की ही है, विपक्ष ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, पहली बार दलित बनाम दलित, भाजपा के राम के सामने कांग्रेस की मीरा। और ऐसा ही कमोबेश ऐसा ही शीर्षक अमर उजाला का भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध पाकिस्तान की संदिग्ध बॉर्डर एक्शन टीम की ओर से भारतीय सेना के दो जवानों की हत्या की खबर ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। कुछ अखबारों ने इसे लीड खबर भी बनाया है। अखबारों ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान की बैड टीम 600 मीटर भारतीय सीमा में घुस आई थी। एक खबर और इंडियन एक्सप्रेस में भरत सुंदरेशन ने पोर्ट ऑफ स्पेन से लिखी है टीम इंडिया में अपने सूत्रों के हवाले से कि वेस्टइंडीज़ दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अनिल कुंबले इनके साथ इस दौरे पर नहीं आने वाले हैं। अखबार ने लिखा है कि खिलाड़ी जब सेंट लूशिया में लैंड कर गए और उन्होंने अपने फ़ोन ऑन किए तब उन्हें पता चला कि कुंबले ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया।
अच्छा, मैच है आज वनडे पहला भारत का, इसकी चर्चा होगी खेल समाचारों में। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप अखबारों की समीक्षा के लिए। पिछले 8 जून से दार्जिलिंग हिल्स पर चल रहे आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग ने कई दफा एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बिमल गुरुंग और ममता बनर्जी एक दूसरे के नज़दीकी दोस्त थे। गोरखालैंड आंदोलन के अगुवा बिमल गुरुंग आखिर क्यों है नाराज, क्या दोनों के बीच दोस्ती की कोई संभावना बची भी है या नहीं, बता रहे हैं दार्जिलिंग में मौजूद हमारे सहयोगी रवि प्रकाश।
सौ साल से भी पुराने गोरखालैंड आंदोलन का चेहरा है बिमल गुरुंग। साल 2007 में अपनी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बनाने के बाद से बिमल पहाड़ के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। उनके नेतृत्व में दार्जिलिंग हिल्स के लोग इन दिनों गोरखालैंड राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ा विरोध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो रहा है, लेकिन साल 2011 में गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के गठन के वक्त बिमल गुरुंग और ममता बनर्जी के संबंध बहुत मधुर थे। वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट डॉक्टर कृपा शंकर चौबे ने बीबीसी से कहा,
बिमल गुरुंग से तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसलिए कि जीपीए का समझौता ही ममता ने कराया था, लेकिन इधर बीच में अभी हाल में जब बांग्ला भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में जब उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू किया जाएगा, पूरे दोनों लोगों में इस तरह से लोग इस कदर घमासान मचा हुआ है।
दरअसल पश्चिम बंगाल में अपार बहुमत हासिल कर चुकी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी हमेशा से पहाड़ पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी उद्देश्य से दार्जिलिंग की कई बार यात्राएं की। शुरू में उन्हें लगा कि जीडीए के गठन का श्रेय लेकर वे दार्जिलिंग हिल्स में अपने पैर जमा पाएंगी, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग की सियासी महत्वाकांक्षा और उनको मिल रहे समर्थन के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाई। हालांकि पिछले दिनों संपन्न नगर निकाय के चुनाव में ममता बनर्जी ने पहाड़ पर न केवल अपने उम्मीदवार उतारे बल्कि मिरिक नगर पालिका पर अपनी पार्टी को जीत भी दिला दी। विमल गुरुंग तृणमूल कांग्रेस की यह जीत नहीं पचा पाए और दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। दैनिक जागरण कोलकाता के संपादकीय प्रभारी जयकृष्ण वाजपेयी बताते हैं,
विमल गुरुंग बनर्जी का जो संबंध रहा है सियासी, इसमें हर हमेशा जो पिछले अगर 7-8 सालों की अगर सियासी वहाँ की जो समीकरण और बाकी चीजें जो चली है वो अगर देखी जाए तो उसमें सबसे बड़ा उतार चढ़ाव रहा है।
अब गोरखा लेने को लेकर पहाड़ पर तीव्र आंदोलन हो रहा है, इसका सबसे अधिक फायदा विमल गुरुंग को मिलेगा क्योंकि इस मुद्दे पर उन्हें पहाड़ की सभी पार्टियों और आम जनता का समर्थन हासिल है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विमल जितने अधिक मजबूत होंगे ममता बनर्जी से उनके रिश्तों में उतनी ही खटास आती जाएगी। दार्जिलिंग के विधायक और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता अमर सिंह राय विमल गुरुंग में गोरखालैंड का भविष्य देखते हैं। अमर सिंह राय ने बीबीसी से कहा,
जेन्युइन लीडर है गोरखा का, उनका एक लक्ष्य है वो गोरखालैंड के लिए लड़ा है। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहते हैं कि बंगाल डिवाइड हो, किंतु विमल गुरुंग और उनका पार्टी तो ये बिलीव करता है कि ये गोरखालैंड डिवीजन की कुरा नहीं है, बात नहीं है कि दार्जिलिंग तो बंगाल का कभी नहीं था, इतिहास तो ये बताता है।
बहरहाल विमल गुरुंग और ममता बनर्जी के संबंधों का रहस्य समझ पाना मुश्किल है। इसके बावजूद विश्लेषक मानते हैं कि अब इनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई है, अगर इनकी फिर से दोस्ती होती है तो यह चमत्कारी होगा। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
पिछले दिनों कश्मीर को लेकर सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जिनसे सामान्यतः सेना के अधिकारी बचते रहे हैं। साथ ही सामने आया मेजर गोगोई का मामला जिन्होंने एक कश्मीरी व्यक्ति को जीप के बोनट से बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। कुछ लोग इसे सेना के राजनीतिकरण के तौर पर भी देख रहे हैं। एक विश्लेषण फैसल मोहम्मद अली से।
पूर्व जनरल अशोक मेहता को वो पोस्टर कई माह गुजर जाने के बाद भी अच्छी तरह याद है। सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सैनिक अधिकारी रणवीर सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के वो बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में तकरीबन हर अहम जगह पर मौजूद, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए।
वो इलेक्शन होने वाला था तो मैंने जब वो देखा, वो सिर्फ एक जगह नहीं देखा, काफी जगह पे देखा, और इतना ही नहीं कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री को भी लखनऊ बुलाया गया और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो 76 मंजिल में उनको लखनऊ के मेयर ने जिस तरीके से पुराने ज़माने में राजा लोग युद्ध जीत के आते थे तो उनका स्वागत होता था, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और उनको वो इंग्लिश में कहते हैं मेस, वो प्रेजेंट किया गया।
फौज के पूर्व अधिकारी को ये पोस्टर सेना के कारनामों का राजनीतिक फायदा उठाने वाले लगे। उन्होंने सेना के राजनीतिकरण के सवाल को अपने एक लेख में उठाया। इस सवाल पर दूसरे हलकों और सेना में भी चर्चा हो रही है। पूर्व सैनिक और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एसोसिएट एडिटर सुशांत सिंह कहते हैं कि सेना की कामयाबी का राजनीतिक फायदा लेने की कवायद पहले भी हुई है, लेकिन उनके लिए जो बात चिंताजनक है वो है कश्मीर जैसे मामले में फौज की पोजीशन।
1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद भी भाजपा की सरकार थी देश में, जब वो चुनाव के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उस टाइम भी इस तरह के पोस्टर लगाए थे, पर उसके बाद जो हुआ है कश्मीर में, जिस तरह से लोगों का जो मूवमेंट है और जिस तरह से वहाँ पर मिलिटेंट अटैक वगैरह हो रहे हैं और जो कि आर्मी का रिस्पॉन्स है और आर्मी की जिस तरह की पब्लिक पोजीशंस रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उससे लोगों को ये ज़रूर लगा है कि राजनीतिकरण हो रहा है सेना का।
पूर्व जनरल शंकर प्रसाद सेना के राजनीतिकरण के सवाल पर लगभग झल्ला जाते हैं और कहते हैं न है, न होगा और न होने देंगे, लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर किए गए फौजी ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से आए कुछ बयान अनुचित लगते हैं।
प्रधानमंत्री तो हर एक चीज़ के हकदार हैं, अगर गलत एक्शन होगा उसके भी जिम्मेवार हैं और अच्छा एक्शन होगा उसके भी उनको क्रेडिट जाएगी, तो ये कहना कि सरकार हैज़ डन अ गुड जॉब That is not politicization. पर हमारे प्रधानमंत्री फलाने फलाने ने किया, इंदिरा गांधी ने किया या नरसिम्हा राव ने किया या किसी ने भी किया, उसका नाम लेके कहना वो politicization होगी आर्मी की।
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसकी सफलता को अपनी आरएसएस की ट्रेनिंग से भी जोड़ने की कोशिश की थी। सेना प्रमुख विपिन रावत ने हालांकि कश्मीर पर कई तीखे बयान दिए हैं, लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि पत्थर फेंकने की बजाय वो हम पर गोलियाँ चला रहे होते, तब मैं खुश होता, क्योंकि तब मैं वो सब कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। सेना प्रमुख ने न केवल मेजर गोगोई को प्रशंसा पत्र दिया बल्कि उसे सही भी ठहराया है। मेजर गोगोई ने कश्मीरी युवक को जीप के बोनट से बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। मेजर जनरल अफसर करीम हालांकि गोगोई की हरकत पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते लेकिन मानते हैं
बहुत जल्दी अवार्ड दे दिया, ये थोड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आर्मी ने अपने फौज को बतला रखा है कि ये दोबारा ऐसी चीजें नहीं हो सकती।
सुशांत सिंह मगर इस बात का एक दूसरा पहलू पेश करते हैं।
पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट ना कि डिप्लोमेटिक है ना पॉलिटिकल है, सेम कश्मीर में पॉलिटिकल आउटरीच बिल्कुल मिसिंग है। उसकी वजह से सेना अपने आप ही सामने आ जा रही है, सेना पूरी तरह से एक तरह से सेना फेस बन जा रही है भारतीय स्टेट का।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चंद दिनों पहले ही एक बयान में कहा भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज की तरह माफिया नहीं है जो गुंडों की तरह सड़क पर बयान देती है। बुरा लगता है जब हमारे सेना प्रमुख सड़क के गुंडों जैसे बयान देते हैं। दीक्षित के बयान पर बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि राजनेताओं को सेना प्रमुख पर बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांग करती रही। दीक्षित ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसके लिए उन्हें खेद है। सीनियर समाजवादी नेता शरद यादव भी पहले नागरिक प्रतिनिधियों की बजाय सेना के जनता से सीधे संवाद पर चिंता जता चुके हैं। सुशांत सिंह कहते हैं वर्तमान सरकार सेना को आगे खड़ा कर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है।
देखिए बीजेपी का हमेशा से मानना ये रहा है हिस्टोरिकली जब जनसंघ के ज़माने से कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो सेना को कोऑप्ट करना चाहते हैं, वो सेना को बोलना चाहते हैं कि भाई सेना और बीजेपी एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ सेना है और एक तरफ बीजेपी है, जिससे कि जब कोई व्यक्ति भाजपा की बुराई करे तो वो बोले कि आप भाजपा की नहीं आप सेना की बुराई कर रहे हैं।
मेजर जनरल अफसर करीम कहते हैं कि अगर आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो नुकसानदेह हो सकता है।
तो अगर समझने वाले लीडर हैं तो फौज को ना पॉलिटिकल होने देंगे ना रिलीजियस होने देंगे।
फौज के पूर्व अधिकारी भी ये चेतावनी देते हैं कि राजनीतिकरण से सेना के लड़ने की क्षमता कम होती है जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। वो पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन एक भी नहीं जीते। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क मैदान पर आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली फिलहाल अनिल कुंबले के कोच पद से इस्तीफे पर बने विवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब मैच से पहले वो पत्रकारों के सामने पहुंचे तो कुंबले पर सवाल लाजमी था।
अनिल भाई has expressed his views and has taken a decision to...
अनिल अपना पक्ष रख चुके हैं और उन्होंने निर्णय भी ले लिया है। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैं करीब 11 बार मीडिया से मुखातिब हुआ। पिछले 3-4 सालों में हमने ऐसा माहौल तैयार किया है कि जो भी चीजें ड्रेसिंग रूम में होती हैं वो बाहर नहीं जाती।
5 वनडे मैचों की सीरीज और एकमात्र T20 में बड़ी जीत इस पूरे विवाद से लोगों का ध्यान हटाने में कोहली की मदद कर सकती है। साथ ही ये ऐसा मौका होगा जब कोहली को टीम चयन में पूरी छूट होगी। वहीं बैडमिंटन में कल का दिन भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। बी साई प्रणीत, के श्रीकांत, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने कल ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
खेल समाचार सुन रही थी राखी शर्मा। और अब कुलदीप मिश्र से सुनते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत में राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में रह रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित रखने के लिए अपनी योजना सामने रखी है। अमरीकी सरकार के एक पूर्व अधिकारी को एक चीनी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास पूर्व FBI चीफ जेम्स कोमी से बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कुर्द और अरब लड़ाके इस्लामिक स्टेट के मजबूत गढ़ उत्तरी कोरिया के रक्का शहर से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर रह गए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से संभवतः एक और रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है कि माना जा रहा है कि यह परीक्षण बुधवार को किया गया। जर्मन संसद ने कानून को मंजूरी दी है जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को चरमपंथी हमलों जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के मकसद से व्हाट्सएप जैसी सेवाओं की बातचीत पर नज़र रखने की इजाज़त मिल जाएगी। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ थी ये सब आप यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल आज शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। अपूर्व कृष्ण को अब अनुमति दें। नमस्कार।